असत्य है वो सत्य है। तो रामानंद जी को महाराज जी अपनी अपनो बोले जी आप ध्यान लगाओ, ध्यान लगा और त्रिवेणी पर जाकर वहां खड़े हो गए कि देखो इधर जाओगे ना ये तो स्वर्ग में, और ये रास्ता है उन योगियों का जिन्हें ब्रह्म साधना की है, आपने स्वर्ग साधना की है, आप इस स्वर्ग से और वहां जाओगे। वो देखो नीचे ब्रह्मा के लोक, विष्णु के लोक, शिव के और इंद्र के उड़ा सारे दिखाए उन्होंने वहीं से, और इस सुरंग से आप वहां जाओगे। इसमें से आगे तीन और पट है, एक इंद्रलोक में, एक विष्णु लोक में, एक शिव लोक में, और एक जाके ब्रह्मा लोक में, चार पट है। उसमें से फिर आगे निकलता है रास्ता इंद्रलोक से, फिर माई के लोक में जाते हैं, और इसमें पड़ गए ना आपका झंझट फिर न्यो का न्यू से। और ये ब्रह्म लोक में जिसको लोग ब्रह्म मानते हैं, इधर चले गए ना ये रास्ता जाता है, ये अंतर्गत की बात बता रहे महाराज जी को। इसमें वो ब्रह्म उपासक योगी जाते हैं जिनको दुनिया ब्रह्म लीन मान लेती है, ये यहां के निचले देवताओं की दृष्टि से अगोचर हो जाते हैं, और लेकिन वो उस महास्वरूप के अंदर अपने वो कर्म भोग लेते हैं और फिर इस चक्कर काटते हैं। ये इस निरंजन का बड़ा जाल से महाराज जी। अच्छा ई महाराज जी कबीर साहब ने वो ब्रह्मरंद्र के घाट को खोला अपनी सब शक्ति से, उससे ऊपर फिर चले जब निरंजन के लोक में प्रवेश करते हैं, वो निरंजन आए शिव भूडे दांत काट के कबीर साहब ने अपना शब्द बोल दिया जो सतनाम है, सारनाम है, एकदम जैसे वो मंत्र से सांप मुंह नीचे न कर लिया रंडोरे ने फर ने, ऐसे निरंजन ने माथा कर लिया, और उसका ऊपरी ऊपर इस जहां पर उसका शीश है वहां पर एक द्वार है जो सतलोक को जाता है, और उसके ऊपर रखे कदड़ को आना जाओ उसने बक्कल तैर दू वहां पक्का रुखाड़ा बैठा है। तो जो ही महाराज का वो नाम वहां पर सुमरण होता है एकदम वो सुकड़ का न्यू हो जासे, और उसके इस पर सर पर दर का पैर और बंदी छोड़ के हंसात्मा ऊपर जाती है। बोल सतगुरुदेव। तो निरंजन कबीर साहब रामानंद जी को ऊपर ले गए सतलोक में, सतलोक में जाके देखा एक इतनी चमक, एक परमात्मा तख्त पर बैठा है और उसमें उसके रोम रोम में तो करोड़ों श्रियों की सूर्य जैसी चांद जैसी झलक निकल रही है। कबीर साहब वहां जाकर और चवर करण लाएंगे, पांच साल के बच्चे, रामानंद जी की आत्मा खड़ी खड़ी देखे कि वह भगवान तो साचे यू दिखे से। इतने में वो सतपुरुष खड़ा हो गया और कबीर साहब तख्त पर बैठ गए, और वो सतपुरुष ऐसे चवर कर रहे हैं। रामानंद जी ने सोचा यू के ताला भाई, छोटे से बाड़ा कर तख्त पर बैठ गया। इतने में वो सतपुरुष कबीर साहब में समा गए, वहां सतपुरुष नीरा अकेले कबीर साहब रहे और चवर अपने आप हो रहा ऊपर। इतने में कबीर साहब ने रामानंद जी की आत्मा को ऐसे इशारा कर दिया, एकदम वापस आ गई उसी शरीर में, चेतन हो गया। आगे देखकर सामने कबीर साहब फिर बैठे, ओए होए होए, पैर पकड़ दिया, बोले तू तो साचे भगवान साहब, तो महाराज जी मन तक गलती खा ली थी। क्या कहते हैं ए स्वामी तुम स्वर्ग की ही छोड़ो आसारीत, गरीब दास तुम कारण हम उतरे शब्द अतीत, आपके लिए मैं शब्द रूपी शरीर बनाकर आया हूं, मेरा हार्ट काम की दे नहीं है। सुन बच्चा मैं स्वर्ग की ही कैसे छोड़ू रीत, गरीब दास गुजड़ी लगी ये जन्म गया मेरा बीत, चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मेरे चा, गरीब दास उस घर आगम की मैं कैसे पाऊं था। आगे की जो बात बताऊं वो मेरे बस का कोई नहीं भाई। हेम रूप जहां, अब स्वर्ग की महिमा गाते हैं, हेम रूप जहां धरणी है, भगवान विष्णु का लोक कति सफेद है बर्फ जैसा, श्वेत लोक है वो भी। हेम रूप जहां धरणी है, रतन बड़े बहु जड़े बहु सोबे, गरीब दास बैकुंठ को मेरा तन मन रहा लोभ, उसमें जान मन लालच कर रहा था एक बार गेड़ा मार के आऊंगा। अगना जी उड़े तो करोड़ों बार जा लिया आप एक बार कोई ना। शंख चक्र गदा पद्म है वो मोहन मदन मुरार, गरीब दास मुरली बजे उस स्वर्ग लोक दरबार, भगवान कृष्ण के हाथ में मुरली से उसके दोनों शंख चक्र गदा पद्म है, उन्हें देख देख कर राजी व्या करूंगा। कितने दिन हो गए नो थना तसलिया, पर वो बताऊंगे आगे चल के। दूधों की नदियां बह गए वो श्वेत वृक्ष सुभाने, गरीब दास मंगल मुक्ति वो स्वर्गपुर स्थान, रत्न जड़ाऊ मनुष्य है गण गंधर्व सब देव, गरीब दास उस धाम की मैं कैसे छोड़ू सेव।
بولے جی سے سوتھرے لوگ نا میں کیوں کر چھوڑوں میرا تو ساجی کرا دا نا جا بیٹھوں سرگ میں. مہاراج جی واہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی. سرگ لوگ بے کنٹھے ہیں یا سے پرے نہ اور. رامانند جی نے بولے اس تو اوپر من تو کوئی بیرا کو نہیں مہاراج جی اور سہے کو نہ. سرگ لوک بے کنٹھے ہیں یا سے پرے نہ اور. گریب دا سٹ ساستر اور چار بید کی دوڑ. چار بید اور چھ اون ساستر اور یوگی پرس صرف وید تک سرگ تک کا ذکر کرتے ہیں آگے کا امنت بیرا کو نہیں. سینس اٹھاسی جسے رٹیں اور گاویں سیس گنیس. گریب دس بیکنٹھ سے اور پر کون دیس. اس سرگ تو اوپر اور کون سا لوگ سے. تو کبیر صاحب نے بولے یہ تو جی کتی نکما لوگ سمجھ لیو تو اس کے درشن ہو جائیں گے. یہ تو دھوکھا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. سن سوامی نج مول گتی کہ سمجھاؤں تو. گریب داس بھگوان نے یو راکھا جگت سمو. یہ تھارے نرندن بھگوان نے تم سموہت کر رکھے ہو یہاں پہ. یہ سموہن کریا تمہارے اوپر چھوڑ رکھی ہے. تم آگے کی سوج تھی ہے کوئی نہ. مر پڑ کے سورگ اور اس کے نیچے بچے جائیداد اولاد اور وہی رشتے داری. اس طرح اگر تھری بدھی جان نہیں دیتا. سن سوامی نج مول گتی یعنی کتی نچوڑ بتا دیتا ہوں. سن سوامی نج مول گتی ہی کہ سمجھاؤں تو. گریب داس اس بھگوان نے یو راکھا جگت سمو. تین لوک کے جیو سب وسے واس بھرمائے. گریب داس جو ہم کو جپے اس کو دھام دکھاؤں. کہ تین لوک کے جیو وسے واس نام ہے. سرگ میں اس سے بھی زیادہ کوکرم ہے جو یہ امرت منڈل میں ہے. اتنے گندے گانے اتنے گندے وہاں پر ویوہار دیکھے بھی نہ انسان پہ. یہاں ورن نہیں کر سکتے. گریب داس نے ایسا وہاں آنکھوں دیکھا لکھ رکھا ہے. کیا حالت ان دیوتاؤں کی. تین لوک کے جیو سب وسے واس نہ بھرمائے. گریب داس ہم کون جپ تو اس کو دھام دکھا. جو دیکھے گا دھام کو سو جانت موج. گریب داس تو سیک ہوں یا سن گا یہ تریگج. یہ گپت آپ کو منتر بتاؤں مہاراج جی. جو اس دام نے دیکھ لے گا نا وہ مجھے مان لے گا. پھر اس کے ہردے سے میں نہیں اتر سکتا. اور اتنے تو آپ مجھے کمین کہو چاہے جلاہا کہو اور جی چاہے بالک کہو آپ کی ماں سے. کرشن وشنو بھگوان کو جڑا ہی ہے جیو. گریب داس تین لوک میں یہ کال کرم اور شیو. کیا کہا کہتے ہیں بندی چھوڑ بھگوان گریب داس جی. کبیر صاحب نے بولے کہ کرشن وشنو بھگوان نے اس برما وشنو مہیش نے یہ تم سب جیو جا رکھے ہو. کیوں جا رکھے ہو؟ کیونکہ ایک کا کام ہے شریر بنانا اور دوسرے کا پالن کرنا تیسرے کا مارنا. کیا کے لیے؟ کہ ان کے پتا نرنجن نے 1,00,000 جیو روز کھانے ہوتے ہیں اور اس کے دباؤ میں یہ بھی نہیں آپ کو یہاں سے چھوڑ سکتے کہ تو بھائی میں کاٹوں اس بیماری نے. گیتا جی میں لکھا ہے صاف کرشن جی نے اس میں کرشن کے اندر سوئم نرنجن نواس کر کے یہ وارتا کہی تھی. کیا کہا؟ کہ ارجن یہ تینوں گن اس سرشتی نے جائیں بیٹھے ہیں. رجگن ستگن تموگن. رجوگن برما ستوگن وشنو اور تموگن شنکر ہیں. یہ خود آپ بھی کہیں سے کہ ان تینوں نے آپ کو یہاں پر باندھ رکھا ہے. وہی بات گریب داس جی کبیر صاحب کہہ رہے ہیں. کرشن وشنو بھگوان کو جڑائے ہیں جیو. گریب داس تین لوک میں یہ کال کرم اور سیر. یعنی مرنا پیدا ہونا مرنا اور پیدا ہونا یا بران مٹی آپ کی مٹے نہیں. سن سوامی تو سے کہوں میں اگم دیپ کی سیل. گریب داس پوچھے پھیرے جو پستک لادیں بیل. تارائن ترلوک سب یہ چلسی اندر کبیر. گریب داس سب جات ہیں یہ سرگ پتال سمیل. چلسی چلسی کا مطلب نشٹ ہوں گے. یہ سب ختم ہو جائیں گے. کون کون؟ تارائن یہ جتنے بھی آپ نے تاراگن دکھائی دیتے ہیں نا اور تینوں لوک اور یہ چندر اور سور اندر کبیر برما وشنو مہیش یہ سب نشٹ ہو جائیں گے. گریب داس سب جات ہے یہ پاتال سرگ سمیر. یہ سرگ بھی نشٹ ہو جائیں گے. سمیرو پروت بھی ختم ہو جائے گا. چار مکتی بیکنٹھ بٹیا فنا ہوئی کئی بار. گریب داس الل روپ مگ کے جانے سنسار. چار مکتی پراپت ہنس بھی کئی بار چکر کاٹ چکے. چوتھی مکتی کے ادھیکاری ہنس جیسے دھرو اور پرلاد ہیں ان کو بھی جب مہا پرلے ہوگی. گیتا جی میں بھی یہ لکھا کہ ارجن جب مہا پرلے ہوگی یہ کلپ کا انت ہوگا. سبھی سورگ اور نرک یہ سب نشٹ ہو جائیں گے. کوئی پرتھوی منڈل نہیں رہے گا.
ये सब प्राणी प्रकृति में लीन हो जाएंगे सूक्ष्म रूप में, उसके बाद दोबारा सृष्टि रची जाएगी और ये सब फिर अपना अपना कर्म लेकर फिर आओगे। फिर ना मेरा भक्ति बने कि ना बने, और मेरा भक्ति जो कर रहा है तो वो फिर इस मृतमंडल में नहीं रहेंगे, ये अपने सतलोक में चले जाएंगे। चार मुक्ति बैकुंठे बटे फना हुई कई बार, गरीबदास अलल रूप मगियो के जाने संसार। कहो स्वामी कितर हो गए जब 14 भवन बिहंड, ये 14 लोक भी ना रहेंगे स्वर्ग आदि ब्रह्मा विष्णु, फिर कहां रहोगे। गरीबदास भी जग कहा ये चले प्राण और पिंड, सुन स्वामी एक शक्ति है अर्दंगी ओंकार, गरीबदास भी जग कहा ये अंत लोक श्रृंगार। ये भाग्य बताते हैं कि जहां जाने के बाद सतलोक में यह प्राणी कैसे रहेगा। जैसे का तैसा रहे ये परलोफना प्राण, गरीबदास उस शक्ति को मैं बार बार कुर्बान। सतलोक में जाए पाछा फिर मरण नहीं होगा, तेज पुंज का शरीर होगा और हमारे बच्चे होंगे और नू के नू वहां पर ठाठ होंगे, और मरण नहीं होगा। सबसे बड़ा दुख यहां पर मरने का, स्वर्ग में भी नहीं रह सकते हम। चलो मर पड़कर स्वर्ग की साधना कर भी लेंगे तो स्वर्ग में भी मरना, तो महाराज कहें जहां मैं ले जाऊंगा वहां फिर तुम्हारा मरण नहीं होगा, वहां पर फिर कोई तेज पुंज का शरीर से ये 5 तत्व का पुतला कच्चा सांग नहीं है। जैसे का तैसा रहे ये फरलोपना प्राण, गरीब दासु शक्ति को बार बार कुर्बानी। गरीब कोट इंद्र ब्रह्मा जहां ये कोट कृष्ण कैलाश, गरीब दास शिव करोड़ है वहां करो कौन की आस। जैसे प्रधानमंत्री के राज्य उसमें ऑफिस में दफ्तर में ये आईएएस ऑफिसर वहां पर एक आम कर्मचारी के रूप में होते हैं और सैकड़ों की संख्या में होते हैं आईएएस ऑफिसर जो डीसी लगते हैं, और यहां पर डीसी की पूरी पावर। तो ये 3 लोके पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश डिप्टी कमिश्नर के रैंक की पावर समझ लो, इनसे ऊपर मुख्यमंत्री यानी ब्रह्म, और इनसे ऊपर पार ब्रह्म और फिर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष, इतना अंतर हो जाता है। शिव शक्ति जा से हुआ ये अंत कोट अवतार, गरीब दास उस अल्प को लख सो हो करतार। ने बोले बंदी छोड़ के शिव जी भी उन्हें ताए थे जिनकी आप बिल्कुल महान शक्ति मानते हो। शंख स्वर्ग पर हम बसे सुन स्वामी ये सैन, गरीब दास हम अल्प है योगल हो कट फैन। कहते हमारा लोक शंखों स्वर्गों से भी ज्यादा उत्तम है और वहां पर हम रहते हैं महाराज जी, वहां चलो। अब सारी योग की मार्ग बता रखे कबीर साहब ने, लेकिन मैं ये इतना वर्णन नहीं कर सकता, अब आपके हमारे पास समय नहीं है और ना आपकी असमझ में आवे। योगी पुरुष होना इसको आसानी से पकड़ लेगा जो हम बताएंगे, क्योंकि हमने भी ये साधना साहिब की कृपा से आप होगी नाम के मंत्र तय। योगी जो कमलों को खोलते हैं हजारों वर्ष बैठ कर एक कमल खुला उन पर, और इस मंत्र के जापते आप पैचा भी लागती जाती है पटापट खुल जाते हैं। तो वो भी लिख रखे हैं ये कैसे कैसे कमल हैं, क्या क्या उनके रंग हैं और किस प्रकार ये योगी साधना करते हैं। उसके बाद कहते हैं ऐसा नहीं, हम जो बताते हैं ऐसे करो आप। ज्यो का त्यों ही बैठ रहो तज आसन सब योग, न्यो के न्यो बैठ जाओ और नाम जपो मैं बताता हूं ऐसे। ज्यो के त्यों ही बैठ रहो तज आसन सब योग, गरीब दास पल बीच में ये सर्वशैल सब भोग। ये ऊपर के सारी चीज दिखाऊं आपने, ऐसे नौका ने बिठाया और महाराज जी वहां पर ले गए। अब जब वापस आत्मा आती है रामानंद जी की और देख कर कबीर साहब ने सामने क्या बोले, बोलत रामानंद जी सुन कबीर करता रे। ओए होए, जब तक उन नौते नीच कहे थे जुलाहा कहे थे और फिर न बोले सुन कबीर करतार। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीब दास सब रूप में है तुम ही बोलनहार। कहते सारे ही सब जो सारी सृष्टि के रचने वाले आप और हर जीव में मालिक आप ही देखो मन तैवे। तुम स्वामी तुम संत हो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तुम रूप में ना और न दूजा अंश। मैं भक्ता मुक्ता भया किया कर्म कुंद नासे, गरीब दास अवगत में ले या मेटी मन की बासे। ने बोले महाराज जी मैं आपका भगत है। कबीर साहब कहो पांच साल के बच्चे को 104 साल के महात्मा। अन्यों के महाराज जी आप मेरे परमात्मा और मैं आपका भगत जी। अकना न्यू ना को महाराज जी न्यू ना डोबो, गुरु तो बने रहो आप पर मैं कहूं ऐसे साधना कर लो। तुम स्वामी तुम संत मैं भक्ता मुक्ता भया, किया कर्म कौन सब नासे, गरीब दास अवगत में ले ये मेटी मन की बात। अविगत जिसकी गत ने कोई ना जानता वो परमात्मा मन आगे मिल गए मालिक, क्योंकि वही तू वहीं पर आप भी वहीं थे और यहां पर भी आप एक से दो होकर आप ही आए हुए हो। दो ठोड़ है एक है तू भया, एक से दो है दोनों ठोड़, सर उस सतलोक में भी आप ही हो और महाराज जी आड़े भी आप ही बैठे हो। सर्व थो रहे हो एक है तुम भया, एक से दो ये गरीब दास हम कारण है तुम उतरे हो मगजोए। ने बोले मेरी खातिर आए महाराज जी, ईव जचगी मेरे हम कारण तुम सतलोक से आए हो। अब आपको एक शब्द सुनाते हैं फिर पांच भी बज गया। आप उस सत्पुरुष को पाने की एक शब्द के द्वारा विधि बताते हैं।
तेरे कुटी मजाख सुरता तोहे पति बुलावे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फंसावे। तेरे कुटी मजाख सुरता तोहे पति बुलावे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फंसावे। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी यारा में संगर के, काम क्रोध मो लोभ मस्करे रही जारा ते डर के। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी आराम संगर के, काम करो दमो लोभ मस्करे रही जारा ते डर के। मात पिता संतान संपत्ति में तुत ओलज गई घर के, ए मिलना चाव पति अपने ते बांध कफन सिर के। मात पिता संतान संपत्ति में तू ते ओलज गई घर के, मिलना चाव पति अपने तहे बांध कफन सिर के। देख जीवती मर कहे सुरता किसा आनंद आवे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फसावे। तेरे कुटी में झांख सुरता तोहे पति बुलावे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फसा। पति मिलन की है विधि बताऊं सुन सुरता चतला के, सत पुरुष से कर ले सगाई गुरु बिचोला बना के। आपति मिलन की है विधि बताऊं सुन सुरता चतला के, सत पुरुष से कर ले सगाई गुरु बिचोला बना के। सत्संग बान बैठिए लाडो दान की मंदी लाके, ये पांचों गणे पैर सोआ गण सतनाम की बिंदी लाके। सत्संग बान बैठिए लाडो दान की मंदी लाके, ये पांचों गणे पैर सोआ गण सतनाम की बिंदी लाके। या प्रेम की लाली ला कहे अपना क्यों ना पति रजावे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फसा। तेरे कुटी मझांख सुरता तोहे पति बुलावे, इस मोह ममता के जाल में तन जाप अजपा जप कहे अपना दहेज बना लिए, جب انحد بازا بازن لاگ خوشی منا لیے جاپ اجپا جپ کہے اپنا دہیز بنا لیے جب انحد بازا بازن لاگ خوشی منا لیے آوے برہا کبیر لیون نے خوش او کیسا لیے جب پریم کی بارش اوون لاگ مڑ مڑ نالیے آوے برہا کبیر لیون نے خوش او کیسا لیے اے پریم کی بارش اوون لاگ مڑ مڑ نا سار سبد کا سر مگا لیے جو پتی کو بھاوے اس مو ممتا کے جال میں تن کال تیرے کٹی میں جھانک سورتا توہے پتی بلاوے اس مو ممتا کے جال میں تن کال آدھینی کی مانگ بھرا لے چڑی چلیے ناڑے جھکا کے یہ سنت سماگم برات تیری تن لے جاوے گا بیا کے آدینی کی مانگ بھرا لے چلیے ناڑے جھکا کے یہ سنت سماگم برات تیری تن لے جاوے گا بیا کے سرت نرت ہے ڈوڑی تیری بیٹھ سن سکھر میں جا کے اے مکر تار کا کھیل کانگنا اللہ لجھان چوکے سرت نرت ہیں ڈوڑی تیری بیٹھ سن سکھر میں جا کے اے مکر تار کا کھیل کانگنا اللہ لجھان چوکے بیٹھ بسواس سیج بچھا کے جو سبد چھیل آوہے اس مو ممتا کے جال میں تن کال تیر کٹی میں جھانک سورتا توہے پتی بلاوے اس مو ممتا کے جال میں تن کال دیو درشتی سے دیکھ لیے توں اپنے پتی کا سیرا عرش کرس پہ ایک سفید گمٹ ہے جاں تیرے پیا کا ڈیرا آندیو درشتی سے دیکھ لیے توں اپنے پتی کا سیرا عرش کرس پہ ایک سفید گمٹ ہے جاں تیرے پیا کا ڈیرا ان ترلوکی آران بھول باوڑی اچھا بیج بسم ہو تیرا رام دہائی ست کہت ہوں ست گرو کرام پھیرا ان ترلوکی آران بھول باوڑی اچھا بیج بسم ہو تیرا رام دہائی ست کہت ہوں ست گرو کراوے پھیرا رام پال ہو ست گرو کا چیرا کال کھڑا لکھاوے اس مو ممتا کے جال میں تن کال تیر کٹی مجھانک سورتا توہے پتی بلاوے اس مو ممتا کے کار فساوے سچائی اس میں وہ سارے مارگ ورنن کر دیے. اس کو کل سب سے پہلے اس شبد کو آپ کو بالکل وسترت رنگ سے کھول کر سناؤں گے کہ اس پرکار ہم گرے بیٹھے ہیں, کیسے سادھنا کی جاتی ہے, کس پرکار دان کی مہندی ہوتی ہے اور کون کون سے وہ گہنے ہوتے ہیں, یہ آپ کو کل بتائیں گے. بند کر دو.
تپ کے برس ازار تو بھی برابر اے نہیں نیو ست گرو کہاں بیچارے. کبیر رام بلاوا بھیجیا دیا کبیرا رو جو سکھ ہے ست سنگ میں وہ سورگ میں نہ ہو. کر جوروں ونتی کروں چرن نواؤں سی سے गुरु राम देवानंद महाराज ने दिया नाम बख्शीश, कोट कोट सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जम गुलाम। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मोले, राम नाम सौदा करो राम नाम ना बोले। कबीर लूट सको तो लूट लो राम नाम की लूट, फिर पीछे पछताओगे प्राण जाएंगे छूटे। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, एक भूली वस्तु लखा वही सतगुरु दातारे। कबीर राम मानुष जन्म पाके भाई नहीं बजा हरि नामे, जैसे कुआ जल बिना खुद आया बेकामे। कबीर मान अर की भक्ति करो ये तजविशिया रस चोजे, बार बार ना पाई यो भाई या मनुष्य जन्म की मौजे। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म सो विनय करूं कर जोरे, तुम बिन जग में है नहीं मैं देखूं जाकी ओरे। कबीर कहां गर्भी हो ये देही देख सुरंगे, भाई बिछड़ जा मिल नहीं जो का चढ़ी भुजंगे। कबीर क्या भरोसा देही का ये बिनस जवे छन माही, श्वास सांस में नाम जपो और जतन कुछ नाई। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता जड़ पड़े भाई फेर न लगे डारे। कबीर पात जड़नता न्यो कहे सुन भाई तरवर राय, इबके बिछड़े नहीं मिला न जन कहां गिरांगे जाए।
आज परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ भगवान कबीर साहेब तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की एक परम कृपा हमारे ऊपर हुई है कि आज इस विशाल सत्संग का ये तीसरा दिन चल रहा है, और कितनी हंस आत्माओं ने इसमें आकर लाभ उठाया। जैसा कि उस दिन बताया था पहले दिन जिस दिन आप सत्संग में आते हो परमात्मा आपको सत्संग आने की उमंग भरता है और आपको ये समय मिलता है कि आप सत्संग में आ जाते हो, वो उस दिन समझो परमात्मा आपके ऊपर विशेष रजा है, आपके ऊपर विशेष प्रसन्न है। और जिसको परमात्मा के नाम पर एक आध घंटा भी नहीं मिलता तो वो ज्यादा पापग्रस्त प्राणी है। तुलसी साहब कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही पर भाई भाग बिना नरपाव नाही। आज जितने भी हंसात्मा सत्संग में आई हैं भगवान की कथा सुनने का एक विशेष लाभ होता है। संतों के दर्शन से आत्मा निर्मल होती है। हमारे कई प्रकार के पाप होते हैं, कुछ पापक्रम ऐसे हैं जो कि संतों के दर्शन मात्र से कट जाया करते हैं, कुछ पापक्रम ऐसे हैं सत्संग में सेवा करने से नरम होंगे, और कुछ पाप ऐसे होते हैं जो कि हमने धर्म करके ही उनको नरम करना पड़ेगा, काटने पड़ेंगे। और कुछ पापक्रम ऐसे होते हैं जो कि भजन से नाम के जाप से कटते हैं। कबीर साहब ने लिखा है कि साध मिलन को चालिए भाई तज माया अभिमान और जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। अब विचार कीजिए कितनी बड़ी बात कही है सतगुरु महाराज ने, पर इसमें वजन बहुत है। कोई विचार करे तो सत्संग में आने के लिए प्रथम तो समय नहीं मिला है, और चले भी गा तो अपने विषय प्रभाव को दिखाने के लिए सत्संग में जो प्राणी जाता है, कोई राजपद को और कोई धन अभिमान को, तो उसका सत्संग में आना और ना आना बराबर होता है। नहीं आना चाहिए, सत्संग में के अंदर एक ऐसा जाना चाहिए जैसे एक बीमार आदमी और डॉक्टर के पास जाता है, उसकी आत्मा करा रही होती है कि हे भगवान मेरे को दवाई दे और मेरी बीमारी कटे। वहां पर ना तो वो किसी राजपद को दिखाता है, एक मरीज जैसे भी व्यवहार करता है, जैसे डॉक्टर कहता है कि लंबा लेट वो उसी प्रकार लेट जाता है, वो कहता है ले दवाई पी उसी समय दवाई पी लेता है। इसी प्रकार जो प्राणी सत्संग में आते हैं उनमें किसी प्रकार का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, चाहे वो राजा आवे और चाहे रंग का आवे। ऐसे भाव से आना चाहिए कि हे भगवान बड़े भाग्य आज मुझे समय मिला है सत्संग के अंदर आने का, और उसके अंदर भी हमें थोड़ा बहुत भी अभिमान रह गया तो वो आना और ना आना बराबर हो जाता है। कहते हैं साध मिलन को चालिए तज माया अभिमान और जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। जब हम सत्संग के लिए जिस जहां भी चलते हैं जहां से, और जितने कदम हमारे वहां तक सत्संग के स्थल तक होते हैं उतने ही संतों ने बताया है सतगुरु महाराज ने, एक कदम एक यज्ञ के बराबर है। एक यज्ञ करने के लिए कितने पैसों की आवश्यकता पड़ती है और कितने समय की आवश्यकता पड़ती है विचार करो। और सतगुरु महाराज ने एक कदम भी सत्संग स्थल की तरफ संतों को मिलनता ही चालन का एक कदम को एक यज्ञ बता दिया, ये सौ की सौ सत्य है। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग भाई दर्शनी को होत हैं जिनके पूर्ण बाग। कबीरा दर्शन साधु का वही साहेब आवे याद, और लेखे में वाहे घड़ी और बाकी का समय बर्बाद है। जब हम सत्संग में आते हैं, संतों के दर्शन करते हैं, परमात्मा एक विशेष कसक के साथ याद आता है, और वो समय वो कर्राहट ईश्वर के चरणों में हमारी एक विशेष महत्व रखती है। इसलिए सत्संग के अंदर जब प्राणी आवे, अपनी मान बड़ाई न छोड़कर, चाहे आपको कितना रेते में बैठने स्थान मिल जाए वहीं बैठ जावे, सत्संग के अंदर चाहे इतना भी आपको प्रसाद मिल जाए उसको सो शुक्र मनावे, विकार रहित तो होकावे, मन में कोई खोट नहीं रखे। अगर इस सथल पर आपने ऐसी गड़बड़ मन में रखी तो परमात्मा माफ नहीं करेगा आपको, और दूने आप पाप के भागी होकर जाते हो। ये परमात्मा का वास होता है, ईश्वर का विशेष स्थान होता है, जहां पर सत्संग होते हैं उसकी चर्चा होती है। वैसे तो परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन जहां सत्संग होते हैं वो परमात्मा विशेष रूप से वहां उपलब्ध होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री उसकी सत्ता देखे तो सारे हिंदुस्तान के ऊपर, सारे देश के ऊपर वो निराकार रूप में छाया हुआ है। उसके डर से, उसके दबाव से, उसके प्रभाव से सारी मशीनरी अपने हिसाब से चल रही है। लेकिन जिस दिन वो किसी शहर में आता उस दिन न्यारी चहल पहल होती है, उस दिन वो स्वयं होता है वहां पर, और उस समय उस सभा में कोई गड़बड़ करे और ठीक आचरण से जो जावे, गड़बड़ करने वाले को तुरंत नतीजा देगा, उसी समय उसको अरेस्ट करवा के अंदर कर देगा, और जो विधि से उससे वातावरण व्यवहार करता है ना जाने उसकी के मौज बख्श जावे। इसी प्रकार सत्संग एक ऐसा स्थान होता है जहां पर परमात्मा का विशेष वास होता है। अगर ऐसा ना हो तो इस शिष्य बुंडे कलयुग में ये पांच दिन का समागम एक घंटे में रोड़ा पड़ ले। शादी होती है दो घंटे की, इसे बुंडे कलयुग में दो घंटे, भाई बोलो मतना, अच्छा दो घंटे की शादी होती है, उसमें भी सारा कुणबा नेताना ओले से और हाथ जोड़े भगवान किसी प्रकार ये ठीक ठाक चले जाए यहां से। वहां परमात्मा का वास नहीं होता, वहां पर कुमत छाई होती है, और यहां पर ऐसा लागे जानो और दस दिन यह समागम चलता ही रहे। यहां पर ईश्वर की प्यारी हंस आत्मा आती हैं जिनमें परमात्मा का विशेष लगाव होता है, और स्वयं ईश्वर वहां पर विद्यमान रहते हैं।
तेरे लगे रहे सत्संग बागे हो बा गरीबदास चमन के माड़ी, तेरे लगे रह सतसंग हो बाग गरीबदास चमन के माड़ी, तेरे लगे रह सतसंग हो बाग गरीबदास चमन के सतसंग से सोदी आवे नहीं जीव चौरासी में जावे, सतसंग से सोदी आवे नहीं जीव चौरासी में जावे, अब मेटो द्वेष और रागे ओ राग या उमर बतेरी जाली, अब मेटो द्वेषर रागे या उमर बतेरी जाली, तेरे लगे र सतसंग बागे गरीबदास चमन के माड़ी, तेरे लगे रे सतसंग बागे हो बा
डेंगरी बदास चम सतसंग में जो नर सतसंग में आते परवचन की मेवा खाते जो नर सतसंग में आते परवचन की मेवा खाते उनके मर जासन से नागे हो ना जिन सुरत गुरे गुरु में लाली जिनके मर जासन से नागे हो सुरत पूरे गुरु से लाली तेरे में बागे हो बागे गरीब दास चमन तेरे लगे रे सतसंग बाग हो बाग गरीब सतसंग में बूटे साधु एक से एक अगादु सतसंग में बूटे साधु एक से एक नर उनकी शरण लागे होला जिनकी झोंकी तड़े न डाड़ी नर उनकी शरण लागे होला जिनकी झोंकी तड़े न डाड़ी तेरे लगे रे सतसंग बा ओ बाग गरीब दास चमन के माली तेरे लगे रे सतसंग ओ बाग गरीब दास चमन के तेरा तरवर राम देवानंद उसका लग गया एक अमर कंदे तेरा तरवर राम देवानंद उसका लग गया एक मोहे दे दिया अमर सुहाग हो सुहाग मेरी जोत गगन में बाड़ी मोहे दे दिया अमर सुहाग हो सुहाग मेरी जोत गगन में बाड़ी तेरे लगे रे सतसंग हो बाग गरीब दास चमन के माली तेरे लगे गरीब दास चमन सतसंग की अमर कहानी बिरले संत विवेकी न जानी सतसंग की कहानी बिरले संत विवेक जागे राम पाल के बाग ओ बाग मिली सार सबद कीता जागे राम पाल के बाग ओ बाग सार सबद की ताली तेरे लगे बागे हो बाग गरीब दास चमन तेरे लगे रे सतसंग बागे हो बाग गरीब दास चमन के
अब इसमें बताया कि तेरे लगे रहे सत्संग बाग गरीबदास चमन के माली इस सारे ब्रह्मंडों का अनंत कोटि ब्रह्मंड के ये खुद स्वयं परमात्मा सत्पुरुष कबीर साहब वही स्वरूप गरीबदास जी रूप में आए थे वही सारी सृष्टि के माली हैं, वो मालिक हैं, और जितने भी यहां पर जीव हैं ये उनके फूल और पौधे हैं। सत्संग में कहते सत्संग से सोदी आवे, भाई नहीं जीव चौरासी में जावे। सत्संग का इतना महत्व बताया है कि जितने भी आज तक संत आत्मा भक्त आत्मा जो निर्मल हुई है उन्होंने सत्संग से ही ज्ञान हुआ है। कोई भी जानकारी अगर हम कोई आध्यात्मिक मार्ग चाहते हैं तो सत्संग से ही प्राप्त होगा। ना रिश्तेदार बता सकते, ना ही हम समाज से इसको प्राप्त कर सकते। ये एक न्यारा स्कूल होता है जहां पर इस मार्ग की पूर्ण जानकारी प्राणी को दी जाती है। उसको ये दुख याद दिलाया जाता है कि राम नाम बिना तेरी कितनी बिरान माटी होगी, कितना दुखी हो जाएगा, और जिन्होंने ईश्वर को याद किया उनको कितना सुख हुआ और दुनिया ने उनके गीत गाए। यहां पर चाहे अरबपति हो जाओ और चाहे भाई खरबपति हो और चाहे भावें सारी पृथ्वी का मालिक हो जाओ, कदे कहीं पर बच्चे बेशक पढ़ ले इतिहास में जो स्कूल में मजबूरी में लाग गीवा तो कोई याद नहीं करेगा उनको। और हमारा दादा चाहे अरबपति हो का चला गया हो चौथा दादा, कोई याद ना करता उसने। और संतों को जिन्होंने परमात्मा के ऊपर मरणा माइंड दिया और अपने जन तन मन की सिरदड़ की बाजी लाकर परमात्मा पाकर चले गए, अपना पूर्ण लाभ मनुष्य का उठा गए, और साथ में आज हमें उनका सहारा मिला हुआ, उनके उदाहरण देने मिल गए कि मीराबाई ने किस प्रकार अपने सिरदड़ की बाजी लाकर और सारे समाज से टक्कर लेकर अपने बेड़े ने पार कर गई। कितना संघर्ष करना पड़ा उस लड़की ने, ठाकुरों की लड़की और 600 साल पहले और सत्संग में आ जा, वह तो पर्दे दबार भी ना जान दिया करते। पर उस लड़की ने यह बेरा पिट गया था कि कितनी बार बहू बन दी और कितनी बार दादी और नानी बन दी, ये बिरान माटी मिट्टी नहीं या दुर्गती न्यो की न्यो बड़ी रही। इब के सूत बैठ रहा से संतों का मार्ग मिल गया और आत्म ज्ञान हो गया, और जब इब कभी पीछे रहेगी तो फिर है फिर से। गरीबदास जी महाराज कहते समझा है तो सिर दरपा, भाई बहोर नहीं है ऐसा दाव। जैतरी समझ में आ गया कि मानुष जन्म फेर नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो मेरा ना कितनी दुर्गति के बाद मिलेगा, और जब मिलेगा यही समस्या फेर पाऊंगी जो आज हमारे सरपदरी हैं, इनको जेल के हम पूरे कर भी गए मान लो ठीक ठाक हमारा सारा। वैसे तो यहां कोई उम्मीद कोई ना किससे की भी, आज सुखी दिखे और तड़के ना जान उस घर पर के कर टूट जा, कोई भरोसा नहीं है। और मान लो ठीक ठाक शरीर चला गया, उसके समय तक बच्चे भी ठीक रहे, तो वो फिर बिना परमात्मा के नाम के कभी पशु बनेगा, कभी कुत्ता बने, कभी गधा बने, कभी कुतिया बने, और फिर लख चौरासी में जैसे जितने भी कष्टदायक जीवन सारे भोगने पड़े। उसके बाद मान लो को 1000 वर्ष के बाद, 2000 वर्ष के बाद, 1,00,000 वर्ष के बाद, और फिर यू मानो शरीर मिल गया स्त्री या पुरुष का, यह समस्या जो की तो फिर पाओगी खड़ी। तो उस मीराबाई का तसल्ली होगी कि तो इस मामले ने नमेड़े का चाल लेंगे। तो मीराबाई का उद्धार कैसे हुआ कि मीराबाई कई जन्मों से लगी हुई थी। ऐसा नहीं होता कि एक के जन्म जीव एक जन्म में, एक जन्म में तो भक्ति प्रवेश प्रवेश होती है इस प्राणी का, और उसके कई जन्मों के पुण्य और इतने प्रभावी होगी वह भक्ति कि उस लड़की के मन में एक के सत्संग में थोड़ी ऐसी बात ऐसी ठेस पहुंचाएगी कि उस ईश्वर के ऊपर सच्ची लौ लाएगी। आपने सुना कि मीराबाई को मारने के लिए जहर तक भेज दिया, वह मरी नहीं, और भी बहुत सी यातनाएं दी, पर परमात्मा ने उसको साथ दिया। उसके पिछले जन्मों की जो कमाई थी वह उसके साथ काम कर रही थी, ना जाने कितने जन्मों में बेचारी ने पापड़ बेले थे, और जब इस जन्म में भी चूक जाती तो फिर लंबा चौड़ा काम बन जाता। उसके बाद उसमें मीराबाई मंदिर में जाया करती थी, क्योंकि उसने मंदिरताई का ज्ञान था, मंदिर से कोई लाभ हानि नहीं थी उसको, लेकिन वह पिछली कमाई उसकी जोर दे रही थी। एक दिन वह दिन के अंदर मंदिर में जा रही थी, उसने देखा कि एक बगीचे के अंदर कुछ महापुरुष बैठे हुए हैं और साथ में काफी भगतजन इकट्ठे हो रहे हैं। तो वो मंदिर से वापस आती दफा देखती है कि चलो दो मिनट यहां पर पता करते हैं ये क्या समागम हो रहा है। वहां पर बंदी छोड़ कबीर साहब रविदास जी अपने भक्तों के यहां पर सत्संग कर रहे थे, और उन्होंने 8-7 दिन का वहां पर समागम कर रखा था। मीराबाई चली गई, जाकर बैठ जाती है, सत्संग शुरू होता है। सत्संग की चोट आत्मा को फोड़ कर दर देती है जो उसके ऊपर मैल जमे हुए होते हैं, और वो तो निर्मल आत्मा थी, एक एक बात ऐसी लगे और करंट सा आवे शरीर में। और उसमें बताएगा कि परमात्मा के नाम में न यह जीव इतना दुख पावेगा कि रो रो का अपना जीवन बताया करेगा, बैल बनकर जुड़ जाएगा हल में, आंखों में का पानी पड़े और समय पर चारा भी ना मिले, और कीचड़ के में पड़ना हो अपने पेशाब के पूछड़ भर भर अपने कड़पा का मारा करेगा कमर पर कर। ऐसे ऐसे सत्संग में उसको जानकारी दी तो मीराबाई ने बहुत ही लगन और लौ के साथ सत्संग सुना। उसमें एक विशेष जानकारी और दी सतपुरुष महाराज कबीर साहब ने, उन्होंने बताया कि भी तीन लोक के परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने से प्राणी स्वर्ग जाता है, स्वर्ग में अपने कर्मों को भोग के जो पुण्य कर्म होते हैं उसके बाद नरक भी भोगता है, क्योंकि यहां पर दोनों कर्म भोगे हैं, पुण्य भी और पाप भी। जैसे कर्म प्राणी करता है वो दोनों भोगने पड़ते हैं, और फिर उसके बाद 84 का पूरा गेड़ा इस प्राणी ने काटना पड़ता है। यहां का यह प्रथम नियम है। जैसे ध्रुव प्रहलाद जैसे ने अच्छी डटकर भक्ति कर ली और सिर दड़की बाजी लाकर वो स्वर्ग चले गए, उनके कई जन्मों के उनके साथ संस्कार थे। और एक ऐसी बात नहीं होती कि 5 साल का लड़का एक का बात न समझ जावे, ये पिछले जन्म जन्मांतर के उसके इतने गजब के इतने बढ़िया पुण्य यानी भक्ति उसकी पिछले जन्मों की आगे अड़का खड़ी होगी, और ये पुण्य ही आगे काम किया करते हैं। तो ध्रुव प्रहलाद भी बताया कबीर साहब ने कि भाई ये जब तक स्वर्ग में रहेंगे जब तक महाप्रलय नहीं होती, जब महाप्रलय होगी ना शिव रहे ना ब्रह्मा रहे ना विष्णु रहे ना विष्णु लोक रहे, और ना ही वो ध्रुव प्रहलाद स्वर्ग में रहे, भाई वापस आ जाएंगे। इसके बाद फिर दोबारा सृष्टि रची जाएगी। ऐसा ही गीता जी में लिखा है कि कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के लोक सब खत्म हो जाएंगे, शिव ब्रह्मा विष्णु आदि के, और सारी सृष्टि महाप्रलय में आवेगी, वे स्वर्ग लोक भी नहीं रहेंगे, और दोबारा फिर ये सृष्टि रची जाएगी, सब प्राणी अपने अपने कर्मानुसार मृत मंडल में फिर अपना नए सिरे से भक्ति और जीवन शुरू करेंगे। इसी बात को बंदी छोड़ कबीर साहब बता रहे हैं कि भाई यहां तुम्हारा ये जन्म मरण और ये कष्ट नहीं मिट सकता, ये स्थाई स्थान नहीं है, अपना स्थाई स्थान है सतलोक, और सतलोक से हम सभी आए हुए हैं। जो सतलोक में सुख है वो ना स्वर्ग में और ना ही वो राज में और ना इन बेटे बेटियां में, हम जिसका संतान नहीं है वह अन्यों जोड़े साथ है, भगवान मेरा एक पुत्र हो जा, उसने पुत्र से बढ़कर कोई सुख महसूस नहीं होता। और जिसका संतान से 3-4 बेटे से वह पीव दारू और गणे मां बाप ने, वह नो कहे भगवान इनकी रांद कट जा, जब उनके बच्चे ना होते उनका भी न्योरन थी कहले तेरा तो जीवन है सफल रहा, तन तो कुछ भी ना कर।
और जिनका आज वो क्रम ठोक पैदा हो रहे हैं उन्होंने कहे भगवान इनता अच्छा तो ना उनते तो बढ़िया। अर्थात ये सुख सा कुछ नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है वो न सोचे परमात्मा इस एक तो हो जा काम गुजारा चल जा, और वो हो जा फिर नो कहे मालिक एक कार का प्रबंध और हो जा, कार भी होगी तो नो सोचे एक फैक्ट्री लाग जा तो गणा बुढ़िया काम हो जा, चलो फैक्ट्री भी लाएगी, और फिर नो सोचे एमपी की टिकट मिले जब काम चल है एमपी की टिकट ले ले, और भाई फिर प्रधानमंत्री बने जब बात बने इतना सूत नहीं आओ इतना उसके मरण का ग्यों तो ले टिकट कट जा फिर गदा बन के और करोड़ियों पर बनाओ प्रधानमंत्री। फिर तो महाराज कहते हैं भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो, तन दर सुखिया कोई न दे जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो, घाटे बाद सब जग दुखिया के गर ही बैरागी हो, घाटे बाद सब जग दुखिया के गर ही बैरागी हो, सुख देवन दुख के डर में गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो, तन दर सुखिया कोई न जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात मन सबका किया विवेका हो, भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया तपसी को दुख दूना हो, जंगम दुखिया योगी तपसी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सब में व्यापे कोई मैल ना सोना हो, कोई मैल ना हो, तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो, सबका भाई साच कहूं तो जग ना मान या झूठ कई ना जाई हो, साच कहूं तो जग ना मान झूठ कई ना जाई हो, ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई, ओ तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो, भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीति हो, सुरपति दुखिया भूपति रंक दुखी बपरीति, कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो, तन दर सुखिया कोई न जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो, तो ये बताओ सत्संग में कि भाई ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी सुख का सांस नहीं ले सकते, कैसे कि स्वयं विष्णु अवतार भगवान कृष्ण आए थे, उनकी लीला ने देख कर जब से पैदा हुए थे और वो अंत में उनके साथ शुरू में कितना पीछे पड़ ली या दुनिया यहां पर है, अगर मारे जैसे अंगेला हो लेता कि तो आत्महत्या करनी पड़े,
आखिर में तीर गेला मारे और बीच में कितना कितना कष्ट उनको पाया। तो यहां पर वो भी जब सुख का सांस नहीं लेंगे, वह आम प्राणी यहां पर कैसे सुखी हो सकता, विचार करण की बात है। इसलिए महाराज कहते हैं कि जब लग हम सतलोक नहीं जालेंगे इतने ये प्राणी काट बिरान मटिया मेटे नहीं कती भी। वो सतलोक क्या है? असंख्य स्वर्गों से भी ज्यादा सुख का स्थान है। वहां पर श्वेत जमीन है और तेज पुंज के वहां पर शरीर मिलते हैं और तेज पुंज के ही सब वृक्ष पहाड़ और जो भी वहां पर वस्तु है सारी तेज पुंज की है। तेज पुंज क्या होता है? एक प्रकाश का समूह को तेज पुंज कहते हैं। जैसे यहां पर पांच तत्व से बना हुआ यह पुतला, इसके पांच तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अब इसमें कोयसा भी दिखाई नहीं देता आपको, और ये शरीर इतना बढ़िया बना दिया, इसकी प्रक्रिया दूसरी बनाकर इसका आकार बदल लिया, पर है ये नौके नौ पांचों तत्व इसके अंदर विद्यमान है। इसी प्रकार वो तत्व तेज पुंज से ऐसा शरीर मिलेगा जिसमें रोग नहीं होता, वो काटे तो नहीं कटे, वो मरे नहीं, वो अमर शरीर होता है। और वहां पर हमारे बच्चे होंगे, यहां पर तो ये बच्चे अस्थाई हैं और हम भी इनके साथ टेम्परेरी हैं, ना जाने कब यहां से हमने जाना पड़ जा और ना जाने इन बच्चे जाना पड़ जा। इसी प्रकार स्वर्ग में अगर देवता भी बन गया अच्छी पुण्य कमाई करके तो उनका भी कोई भरोसा नहीं, कोटबर वहां से टिकट कट जा और फिर ऐसे ऑटोमेटिक नरक और स्वर्ग भोगते रहे और चले जाओ। तो सतगुरु महाराज कबीर साहब ना के यही बताया, भाई जहां पर सुख है वहां तक का तुमने ज्ञान भी कोई नहीं बताई, जहां पर तुम्हें सुख होगा उसका तो अभी शास्त्रों में वो भेद भी नहीं मिला आपको, उन्होंने आकरे की नारा भेद यही दिया। इस बात का मीराबाई का बड़ा दर्द हुआ क्योंकि वह भगवान कृष्ण की तगड़ी उपासक थी। साहब के पास पहुंची, कहने लगी महाराज जी थोड़ी सी बात पूछना चाहती हूं। आप पूछो बेटी, कोई बात ना, दो पूछो। जैसा आपने बताया कि भगवान विष्णु शिवादि से और स्वर्ग से ऊपर कोई और स्थान है, कहने लगे बेटी ऐसा स्थान है कि ये स्वर्ग आदि तो थोड़े से दिन के हैं, ये तो सपने जैसा हिसाब किताब है और वहां पर वो स्थाई स्थान है। वो कहने लगी जी हमने कभी सुना तो नहीं किता थे, अब मैं सुनाने लग रहा बेटी, सुनने से जानकारी होती है। हमने रामलीला रामायण ही सुन ली और गीता जी कृष्ण लीला उनकी जानकारी होगी, उन भगवानों की महिमा का हमें बेरा पिटा। तो वो तीन लोक के परमात्मा हैं बेबे हैं और तीन लोक के मालिक, जैसा कंस को मार देना, चाणूर को गढ़ देना और बाकी जितने भी कर्म्स हैं ये तीन लोक के परमात्माओं के अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं, लेकिन ये तेरे जन्म मरण नहीं मिटा सकते हैं। क्योंकि स्वयं गीता जी में यही प्रमाण दिया 100 बार कि अभी अर्जुन अड़ जन्म मरण को ना मिटा है, ना बेरा तेरे कितने जन्म हो लिए, ना बेरा मेरे कितने हो लिए। तो इस बात का मीरा का बहुत असर हुआ कि बात तो महाराज जी न्यों की न्यू से, तो बेबे नाम ले तू और नाम लेकर अपना भजन कर उस परम पिता परमात्मा सतपुरुष का। और यही गीता जी में लिख रहा क्या भगवान कृष्ण ने कि अर्जुन पहले कहते मेरा जा अंदर और तेरे को मैं मोक्ष कर दूं दे दूंगा, और फिर कहता भाई मेरा मोक्ष तो इतना है जब तक महाप्रलय ना होगी। उस परमपिता परमात्मा का ध्यान धर जिससे सारी सृष्टि रची गई और वहां उसका ध्यान स्वाभाविक कर्मों से करता हुआ आप उस परमलोक को जा सकते हो, चले जाओगे परम धाम को।